ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। ये मुरली होली की मुरली है और होली कैसे मनानी है वो बाबा ने बताया। गुलाल कौन सा, रंग कौन सा, जलाना क्या, मनाना कैसे, वो सारी बातें आज बाबा ने बताई है। बहुत लंबी मुरली है, हम सुनेंगे और दिल में धारण करेंगे और अपने आप से कई बातें पूछेंगे, क्योंकि बाबा ने हाथ भी उठवाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 5/10/2025 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 3/3/2007 की होली पर। हेडिंग है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल। गुलाल लगाते हैं ना होली पर, तो कौन सा गुलाल हम लगाते हैं? ज्ञान का गुलाल। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल और गुण और शक्तियों का रंग। पिचकारी से रंग लगाते हैं ना, तो गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। केवल देखने नहीं आए हैं पर होली मनाने आए हैं। किससे होली मनाने आए हैं? बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। सबसे भाग्यशाली और सबसे पवित्र बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, क्या करते हो? मनाना अर्थात बनना। तो केवल मनाया नहीं एक दिन, लेकिन हम बनते हैं। मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली, होली आत्माएं हो। तो होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। बाबा इस नजर से हम बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे महान पवित्र आत्माएं, होली आत्माएं हैं। दुनिया वाले तो शरीर को सूंड रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? कौन से रंग से रंगा है आप आत्माओं ने? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? वो स्थूल रंग तो लगाते हैं, फिर कई तो ऐसे रंग होते हैं जो उतरते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है, और कई कच्चे रंग होते हैं, निकल जाते हैं धुलाई से। लेकिन बाबा हम बच्चों को कौन सा रंग लगाते हैं? हम एक दो को कौन सा रंग लगाते हैं? तो बाबा कहते हैं आप सभी कौन सी आत्माएं हो? आप होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गए। तो आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को सूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? अच्छे से अच्छा अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सबने परमात्म संग का रंग, कौन सा रंग? अविनाशी भी हो और अच्छे से अच्छा भी हो, आप सबने परमात्म संग का रंग आत्माओं को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। महान भी है सहज भी है। क्या? परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग, सत का संग, परमात्मा का संग। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी, कलयुग अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा संग का रंग है। परमात्मा का संग सबसे ऊंचे से ऊंचा संग और रंग है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? परमात्म संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से क्या होगा? इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। महान भी बन गई, पूज्य भी बन गई। किस आधार से? परमात्म संग के रंग में रंगने से। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। परमात्मा को केवल याद करने में कितनी मेहनत करते हैं, उनका संग अनुभव करने की तो बात ही दूर। ये तो बाबा कहते हैं, ये अविनाश, दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा। क्या कहा? दिल से, मेरा बाबा। सबने दिल से कहा मेरा बाबा। हाँ, कहो दिल से मेरा बाबा। और बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया, लग गया रंग। आपने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो बाबा के संग का रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया है? ज्ञान का गुलाल लगाया है और गुणों का रंग लगाया है। ज्ञान का गुलाल लगाया है और गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। कल पहले किया था ना बाबा ने, तो हम तो देवता बन गए थे उस रंग से, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। इतना ऊंचा रंग लग गया हमें, जो आज तक कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं तो बहुत बनते हैं दुनिया में, कई पवित्र रहते हैं ना, ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र आत्माएं तो बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है, क्योंकि प्रकृति पवित्र बन जाती है तो फिर पवित्र शरीर भी बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे, जो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, तो कैसे बनी ये श्रेष्ठ पवित्रता? सिर्फ संग के रंग से, बाप के संग के रंग से इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी। आप सभी फलक से कहते हो, फलक से, नशे से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे तो क्या कहोगे फलक से? अगर आप बच्चों से कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, तो परम धाम में तो है ही, वो तो कोई नई बात नहीं है, परम धाम में तो है ही, लेकिन फलक से क्या कहेंगे? लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? अभी बाबा हमारे साथ है तो कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे परमात्मा को? अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है, हमारा दिल तख्त बाबा को अच्छा लगता है, हमको तो बाबा का दिल तख्त अच्छा लगता ही है, लेकिन बाबा को भी हमारा दिल तख्त अच्छा लगता है। तो परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है, ऐसा है ना? आपके दिल में बाप रहता है और आप बाप के दिल में रहते हो। जो दिल में रहता है बाप के और बाप आपके दिल में, वो हाथ उठाओ, देखते हैं, हाँ सब हाथ उठा रहे हैं, बाबा आपके दिल में, आप बाबा के दिल में, तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा लगता ही नहीं है, भगवान को भी हमारा दिल अच्छा लगता है और कहीं उनको रहना अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो, जुड़े हुए रहते हो, बाबा आपसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। बाबा के साथ हम कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बाबा की कंपनी हमारे साथ है, संग हमारे साथ है, वो बाबा कहते उसका लाभ नहीं लेते हैं। कहते तो हैं कि बाबा हमारे साथ जुड़े हुए, वो कंबाइंड का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया, भगवान को साथी तो बना लिया, पक्का है, हाँ पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया बाबा को, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते बाबा हमारे साथ जुड़े हुए कंबाइंड है, सदा उनकी कंपनी में है, हम उनके संग में है, लेकिन बाबा कहते हैं क्या अंतर पड़ जाता है, मेरे बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है, हर समय उसका संग अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं नंबर वार फायदा उठाते हैं, कारण क्या होता है, हाँ फायदा उठाते हैं तो बाबा क्या देखते हैं, पर नंबर वार फायदा उठाते हैं, कारण क्या होता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, सभी एक जैसा बाबा से, बाबा के संग का फायदा नहीं उठाते हैं, तो बाबा कहते तुम अच्छी तरह से जानते हो, बाबा ने बताया कैसे संग का फायदा लो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद, रावण की पुरानी जायदाद क्या है, यही विकार है और क्या, रावण की पुरानी जायदाद कौन सी, पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई। अभी तो आप राम के बन गए, पर रावण की पुरानी जायदाद जो पुराने संस्कार है वो अगर रह गए हैं, तो बाबा कहते हैं तो अपने पास, तो वो चीज रावण की चीज पराई चीज हो गई। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है। हाँ भाई ये किसकी चीज है, ये फलाने, अरे भाई दे दो उसको, वापस कर दो, उनकी चीज है, हम क्यों रखें। तो पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा, रू रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे बाबा को, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। बाबा को कहते हैं बाबा मैं क्या करूं, बेबसी बताते हैं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। तो बाबा कहते क्या ये आपके संस्कार है, जो कहते हो ये मेरे संस्कार है, क्या करें, ये कहना राइट है कि ये मेरे पुराने संस्कार है, मेरी नेचर है, ये कहना राइट है, राइट है। बाबा फिर पूछते हैं, जो समझते राइट है वो हाथ उठाओ, माया के जो ये रावण की प्रॉपर्टी है, पुराने संस्कार, वो राइट है कहना, क्या करे बाबा ये मेरे संस्कार है, तो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ, कोई नहीं हाथ उठाएगा। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं उठाया, तो कहते क्या हो, गलती से कह देते हो, क्या करे बाबा मेरे संस्कार, अगर ये कहना राइट नहीं है तो फिर कहते क्यों हो, तो क्या गलती से कहते हो, जब मरजीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है, मरजीवा बन गए ना, पुराने संस्कारों से तो मर गए ना, नया जन्म लिया है, नया जीवन लिया है, तो आपका सरनेम क्या है, पुराने जन्म का सरनेम है वा बीके का सरनेम है, अरे क्या लगाते बीके बीके या बीके, तो पुराने संजन्म का सरनेम है वा बीके का सरनेम है, अपना सरनेम क्या लिखते हो, बीके या फलाना फलाना। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए, मर गए उस जन्म से तो फिर पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए, ये पुराने तो पराई संस्कार हो गए ना, मेरे तो नहीं हुए ना, तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना, होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे, मेरे संस्कार। ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में समाप्त करना, ये शब्द बोलना, ये शब्द कोश से निकाल देना डिक्शनरी से, मेरे संस्कार। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना, शब्द कोश है, क्या क्या है जीवन में, कितना अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं ये जीवन भी एक डिक्शनरी है ना, तो अभी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना, संकल्प में तो लाना ही नहीं है, पर स्वप्न में भी नहीं लाना है कि ये मेरे पुराने संस्कार है। अब तो जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार, सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प किया है कि ये प्रतिज्ञा अपने से की है, दृढ़ संकल्प ये किया है, प्रतिज्ञा की है अपने से, गलती से भी मेरा नहीं कहना, मेरा संस्कार, मेरा मेरा कहते हो ना तो जो पुराने संस्कार है वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो पुराने संस्कार बैठ जाते हैं, निकलते ही नहीं है। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? जानते तो हो, मानते भी हो कि बाबा हमको किस रूप में देखना चाहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को प्रकृति के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। कितनी ऊंची नजर से बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना, राज्य अधिकारी होना, अधीन तो नहीं होना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो, तो खुद कैसे अधीन होंगे? और ये जो अधीन आत्माएं हैं उनको अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उनको भी अधिकारी बनाने वाले हो। कैसे बनाते हो अधिकारी? रहम दिल बनकर। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना, बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। बहुत डबल विदेशी आ जाते हैं ना होली पर, एक शिवरात्रि पर, दूसरा होली पर, फरवरी मार्च में बहुत डबल विदेशी आते हैं। तो बाप दादा को भी खुशी है, सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना, हाँ, स्नेह का विमान। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी है। तो सभी के पास मन का विमान है। विमान में अभी क्या क्या चाहिए? विमान ठीक चले उसके लिए क्या क्या चाहिए? विमान में पेट्रोल ठीक है? पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई है विमान में। पंख ठीक है? क्योंकि पंख भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो भी सीधा होना चाहिए। पंख ठीक है? स्टार्ट करने का आधार ठीक है? ये ना स्टार्ट करते ना उसको, शुरू करते तो वो भी आधार ठीक है? चेक करते हो? ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है, अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख, अब कौन से दो पंख है? एक है हिम्मत का पंख, दूसरा है उमंग उत्साह का पंख। तो अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ है तो एक सेकंड में स्टार्ट हो सकता है ये विमान। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? कौन सी चाबी है विमान स्टार्ट करने की? मन के विमान को स्टार्ट करने की चाबी कौन सी है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा, ये विमान मन का उड़ गया। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत और उमंग उत्साह, ये दोनों पंख ठीक होने चाहिए। फिर जैसे मेरा बाबा कहा वो मन का विमान उड़ेगा, जहां जाना चाहो वहां। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? क्यों हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है? क्योंकि बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का एक कदम और हजार कदम मदद बाप के। अब हिम्मत छोड़ दी तो बाबा की मदद कैसे मिलेगी? तो इसलिए वो बाबा का ये वरदान है, वायदा है कि एक कदम आपकी हिम्मत का और हजार कदम मदद बाप के। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। उस संस्कार को मिटाने की हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो, होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप का हूँ, ये हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? ये हिम्मत नहीं भूलेंगे, मैं बाप का हूँ, बाप मेरा है, ये हिम्मत नहीं भूलेंगे तो क्या होगा? जो जो कैसे करूँ, ये संकल्प जो उठता है वो कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूँ, क्या करूँ, ये नहीं, ऐसे हुआ ही, ऐसे हुआ ही पड़ा है। ऐसे शब्द का माना ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, ऐसे नहीं। क्या कहो? हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है। तो दृढ़ निश्चय वाले को बाबा कहते हैं, दृढ़ निश्चय वाले को मदद, दृढ़ निश्चय वाले को बाप बंधा हुआ है मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो, हाँ बाबा बंधा हुआ ऐसे तो कहते भी हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। कैसे? बाबा आप मदद तो करेंगे ना, जैसे भीख मांग रहे हो, हाँ भगवान आप देंगे ना, तो बाबा आप मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, बंधे हुए ही हो, ये कहने की बजाय आप बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो, बंधे हुए हो ना, ये शक की निशानी है, इसको इंग्लिश में परहैप्स माना शायद, तो बंधे हुए तो हो ना, तो ना लगा देते हो शब्द। निश्चय बुद्धि, निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ, दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो बाप दादा, जब बच्चों की रू रिहान सुनते हैं तो रू रिहान तो बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होकर नहीं करते हो, थोड़ा बोझ उठा करके करते हो, प्लेन बुद्धि बिल्कुल ब्लैंक, बस बाबा की मदद साथ है, ये बुद्धि से भूल जाते हो। तो बाबा कहते प्लेन बुद्धि से नहीं करते हो, तो प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूरियान सुनते हैं तो रूरियान बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि बिल्कुल साफ बुद्धि होकर नहीं करते हो। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, क्या कहते हो, करते तो हैं, होना तो चाहिए, ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं है। होना तो चाहिए, करते तो हैं, हाँ तो बाबा कहते हैं ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो, फिर कहेंगे पता नहीं पता नहीं, माना ये वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो, स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अब स्मृति लाओ पिछले कई कितने कल्पों की, ये कई कितनी कल्पों की विजय है। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हो। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हो, अनेक बार के विजयी हो, विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगा, विजय आप आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगा। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, नशा है ना। होगा नहीं होगा ऐसे नहीं, होगा नहीं होगा ऐसे नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं है ही, यही नशा रखो। थे हैं और होंगे तो ऐसे होली हो ना, होलीस्ट तो हो ही। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे। हो गई हो गई होली, खेल लिया बाबा से, अभी और क्या खेलेंगे। तो बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है, इसमें पास है, उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे, कभी कभी मर्ज हो जाता है। उमंग उत्साह कभी इमर्ज हो जाता है, कभी मर्ज हो जाता है। तो मर्ज नहीं हो जाए अंदर में, नहीं उसको जैसे हम भूल गए है ना, अंदर ही चला गया। इमर्ज हो, प्रैक्टिकल में हो, मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे। क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है, एक दिन का उत्सव नहीं है। हाँ, एक दिन तो उत्सव मनाया होली कर, अगले दिन नाराज, मायूस, उदास। तो बाबा कहते तो एक दिन का उत्सव थोड़ी है, संगम युग ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं भक्ति मार्ग में, ये उत्सव कभी कभी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, सारा साल तो टेंशन में, अभी एक दिन होली आई और रंग फेंकते हैं या रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, क्योंकि बहुत समय तो वो टेंशन में रहते हैं ना। तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाए, लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही है, हर सेकंड नाचना और गाना है ही है। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना कि नहीं, सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो या नहीं। नाचना आता है खुशी में, नाचना आता है खुशी में, आता है नाचना। जिसको आता है वो हाथ उठाओ, नाचना खुशी में सबको आता है, नाचना आता है। अच्छा, हाँ हाँ, अभी हाथ उठाए, नाचना आता है ना खुशी में, बहुत नाचते हैं, नाचना आता है। अच्छा, आता है तो मुबारक हो, नाचना आता है खुशी में। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, दो शब्द कभी नहीं सोचना। बाबा ने दो शब्द दिए थे मुरली में जो कभी नहीं सोचना है, क्या? सम टाइम और समथिंग, ये कभी नहीं सोचना। आदत है ना कहने की, सम टाइम, कभी कभी, कभी कभी कर लेंगे, समथिंग ना कुछ है, कोई संकोच है तो इसलिए समथिंग। तो समथिंग और सम टाइम, तो बाबा कहते हैं ये दो शब्द कभी नहीं सोचना। वो किया है होमवर्क, किया है कि हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि अभी भी सम टाइम है, सम टाइम, समथिंग, खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई स्थूल टांगों से नाचने की बात नहीं है। उस स्थूल टांगों से नाचेंगे तो थक भी जाएंगे, ये तो अंदर मन में नाचना है ना। तो बाबा कहते इसमें थकने की तो बात ही नहीं है, चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो, और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना, बाबा ने कितनी प्राप्तियां कराई है, वो गीत भी तो गा सकते हो ना, गीत भी आता है ना, ये गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है किसको नहीं भी आता है। कईयों को कहेंगे ना अब गीत गाओ, नहीं भाई मैं गीत नहीं गा सकता हूँ, मेरे से गीत गाना नहीं होता है। बोल सकता हूँ पर गीत नहीं गा सकता हूँ, परंतु बाबा कहते हैं ये जो गीत है अंदर खुशी का वो तो सभी गा सकते हैं। गीत भी आता है ना, ये गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है किसको नहीं आता है, लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वो तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ। और काम ही क्या दिया है बाबा ने, बस नाचो और गाओ, ये दो काम है ना, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, मन का नाचो मन में गाओ, एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। हाँ बस नाचो गाओ बस। अच्छा तो होली तो मना ली ना, नाचो गाओ होली मना ली, रंग से अपने को रंग दिया बाबा के संग के रंग से। अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा अभी हम रंग की होली मनाएंगे। उस दिन तो खूब पिचकारियां ले आते थे बाबा के सामने, और बाबा को भी कहते थे बाबा आप पिचकारी चलाओ, तो बाबा पिचकारी भी चलाते थे और बाबा को भी पिचकारी लगाते थे। तो अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा आपको ही तो भक्तों भक्त कॉपी करेंगे ना, भक्त भी यही कॉपी करते पिचकारी से रंग डालते हैं। आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना, आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई न कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं, जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजिए। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हो ना तभी पहुंच जाता है, लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और हाँ तब पहुंच जाता है, लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुणा दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है हाँ बाबा के पास वतन में संदेशी जाती है ना, तो हरेक अपनी अपनी तरफ से याद देते हैं, बाबा को हमारी याद देना, बाबा को हमारी याद देना कहते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना बाप दादा के पास पहुंच गई है, भले कईयों ने संकल्प नहीं किया, संदेशी को मुख से नहीं बोला लेकिन बाप संकल्प किया तो भी वो संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच गया। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। यह एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है, गांव वालों की भी याद साधन न होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है। कोई ईमेल या वो सब करने का साधन उनके पास नहीं भी हो गांव में, लेकिन संकल्प किया बाबा के पास वो याद प्यार पहुंच गई। तो बाप के पास पहुंच जाती है क्योंकि बाप के पास कैसे पहुंचती है, बाबा के पास, बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। कौन से स्पिरिचुअल साधन, आध्यात्मिक साधन कौन से हैं? अच्छा हाँ मन संकल्प, संकल्प बच्चों ने किया वो संकल्प वो आध्यात्मिक साधन है, वो बाबा के पास पहुंच गया। अच्छा आजकल के जमाने में अभी बाबा ने एक्सरसाइज कराई है, लेकिन कितना रमज रूप में कितने सुंदर रूप से बाबा ने ये बात स्पिरिच एक्सरसाइज की बात कही है। जैसे बाबा कहते हैं आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो एक्सरसाइज करो, दवाई छोड़ो एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो, 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो, 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी, यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो। ये एक्सरसाइज हमारे डबल विदेशी भाई बहनों ने एक बार ये ऑनलाइन किया था, तो ऑनलाइन में हमको भी कहा था आप भी करो 1 मिनट। हाँ, तो 1 मिनट कहाँ पहुंचे, 1 मिनट कहाँ पहुंचे, 1 मिनट कहाँ पहुंचे। तो ये बाबा कहते हैं ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो, तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना मधुबन वाले, हो सकता है, मधुबन है फाउंडेशन, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर न चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना, तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है वो बात। मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात भी नहीं, कोई बात छिपती नहीं है मधुबन में, हर चीज आउट हो जाती है, अच्छी भी हो तो पुरुषार्थ की भी हो तो भी बाबा कहते छिपती नहीं है कोई बात। बाबा ने एक बार कहा था मधुबन शीश महल है, सब पता चल जाता है, कुछ भी छिपता नहीं है। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। तो पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स को स्टॉप करें। हो सकता है वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्पों को मधुबन निवासी पहले रोके। हो सकता है, फिर बाबा पूछते हो सकता है ये आगे आगे जो बैठे हैं ना सब मधुबन वाले, शांतिवन में आगे आगे बैठते थे अलग डिपार्टमेंट्स के, मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी ने हाथ उठाया जो बैठे थे, तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ वेस्ट खत्म। बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प ही बंद करो, संकल्प तो चलेंगे लेकिन वेस्ट संकल्प नहीं, वेस्ट संकल्प फिनिश। फायदा तो है नहीं, अब व्यर्थ सोचते हैं तो बाबा कहते फायदा तो नहीं है उन व्यर्थ संकल्पों में, परेशानी नहीं है, तो हो सकता है व्यर्थ संकल्प खत्म। जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, हाथ उठाओ। हाँ भाई हाथ उठाओ, देखो बाबा कहते देखो थोड़े हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, वहां हाथ उठाते होंगे कई ना, बैठे होंगे मधुबन में भी सुन रहे हैं, वो हाथ उठाओ करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ। देखो बाबा दो दो हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं, हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी है, बहनें हाथ उठाओ। हाँ मधुबन की बहनें देखो, हाँ हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, मीटिंग करना बहनें भी, बहुत अच्छा। दादियां आप मीटिंग कराना इनकी, देखो हाथ तो सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना, हाथ उठाया। हाँ वीडियो वालों को बाबा कहते हैं तेल का वीडियो निकालो, तो कल शांतिवन से जो वीडियो निकालता है ना वो भाई आया था ऊपर, तो कहता था कि वो उस समय बाबा मुझे देखते हैं, मुझे बाबा कहते हैं वीडियो वाले हाथ उठाओ, तो बाबा वीडियो वाले को देखते तो सीधी दृष्टि मुझे मिलती है। हाँ वो बता रहा था, तो अभी हाथ की लाज रखना। ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया याद है, ला बाबा के अंतिम शब्द निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये बाबा की ने जो सौगात दी, वरदान दिया अंत में, वो सौगात मन से स्वीकार एक सेकंड में कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली देने के लिए है। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, सॉरी, कि आज के दिन होली, बाबा कहते हैं होली अर्थात जो बीत चुकी, होली का अर्थ बाबा बताते हैं, होली अर्थात जो बीत चुकी होली माना हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन अंतिम समय तक सेवा की, अंतिम दिन अंतिम समय तक बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला के फिर कमरे में गए और कैसे वहां पंछी उड़ गया। तो अंतिम समय तक सेवा की, ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। एक है लव, दूसरा है लवलीन। तो लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में, कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो, तो सब कुछ भूल कर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, बाबा से प्यार ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये लव ही लक के लॉक की चाबी है। तो लक यानी भाग्य का जो ताला है, वो उसकी चाबी क्या है? लव, बाबा से प्यार। ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन को, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। अव्यक्तिशारी, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो की अंतर्गत मनसा शक्ति का दर्पण है। मनसा शक्ति का दर्पण है। कैसे पता चलता है कि मनसा में शक्ति है? तो मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। हमारे बोल कैसे, हमारे कर्म कैसे हैं, वो हमारी मनसा शक्ति का दर्पण है। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। इसको कहते हैं मनसा शक्तिशाली। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे मुरली, फिर से रिवाइज करना अपने मन में और प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। ओम शांति।